एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में झांक रहे हैं जिनका नाम तो बहुत सुना है पर जिनके विचार शायद उतने सीधे नहीं है, थॉमस एक्विनास।
हाँ, और इस सफर में हमारी गाइड होंगी फर्गस केयर की दो किताबें जो एक्विनास का एक तरह से परिचय कराती हैं।
नमस्कार।
तो जैसा आपने कहा, आज हम फर्गस केयर के नजरिए से थॉमस एक्विनास को समझने की कोशिश करेंगे।
जी, हमारे पास केयर की दो किताबें हैं, एक खास तौर पर एक्विनास के तर्क और आस्था के तालमेल पर है और दूसरी उनके जीवन और विचारों का एक संक्षिप्त परिचय देती है। मेरा काम यहाँ इन विचारों को थोड़ा और खोलना होगा।
और ये विषय मजेदार इसलिए है क्योंकि आजकल भी हम ये बहस सुनते ही रहते हैं, भाई क्या विज्ञान और धर्म साथ चल सकते हैं? क्या हमारा तर्क और हमारी आस्था दोस्त है या दुश्मन?
बिल्कुल, और यही सवाल करीब 800 साल पहले 13वीं सदी में एक्विनास भी सोच रहे थे।
तो क्या उनके जवाब आज भी हमारे किसी काम आ सकते हैं?
चलिए देखते हैं।
हाँ, और इसमें हमारे गाइड है फर्गस केयर।
उनके बारे में जानना थोड़ा जरूरी है मुझे लगता है।
हाँ बताइए।
केयर स्कॉटलैंड के एक जाने माने डोमिनिकन पादरी हैं, धर्मशास्त्री हैं, विद्वान हैं, और सबसे खास बात वो उसी डोमिनिकन समुदाय से हैं जिससे एक्विनास थे।
अच्छा, तो उन्हें एक अंदरूनी नजरिया मिलता होगा, है ना?
हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ बाहर से विश्लेषण नहीं कर रहे, वो उसी परंपरा का हिस्सा हैं।
और अकादमिक रूप से भी वो काफी मजबूत हैं, ऑक्सफोर्ड से जुड़े रहे हैं, दर्शन और धर्मशास्त्र पर बहुत लिखा है।
जी, लेकिन उनकी जो अच्छी बात है वो ये कि वो मुश्किल विचारों को भी आसान बना देते हैं आम पाठक के लिए।
हाँ, वो एक्विनास को किसी म्यूजियम की मूर्ति की तरह नहीं देखते।
नहीं नहीं, बल्कि एक ऐसे साथी की तरह जिनसे हम आज भी बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं।
और केयर का एक बड़ा मकसद, जैसा मैंने समझा, वो एक्विनास की छवि को तोड़ना भी है।
बिल्कुल, अक्सर लोग उन्हें बस एक रूखे तर्कवादी दार्शनिक की तरह देखते हैं। केयर याद दिलाते हैं कि एक्विनास सबसे पहले एक धर्मशास्त्री थे, एक साधक थे। उनका असली लक्ष्य ईश्वर को जानना था, दर्शन तो बस एक औजार था उस रास्ते पर।
अच्छा, तो फिर केयर की इन किताबों का निचोड़ क्या है,
मतलब मुख्य बात क्या है?
केयर का मुख्य तर्क ये है कि एक्विनास पश्चिमी सोच के इतिहास में शायद सबसे ज्यादा गलत समझे गए विचारकों में से हैं।
और साथ ही आज के लिए जरूरी भी।
हाँ, बेहद जरूरी। उन्हें सिर्फ एक पुरानी व्यवस्था बनाने वाला मान लेना ठीक नहीं।
तो उनकी असली प्रतिभा किसमें थी?
केयर कहते हैं उनकी असली प्रतिभा किसी कठोर सिस्टम बनाने में नहीं, बल्कि तर्क और आस्था को एक साथ लाने में थी, एक गतिशील तरीके से। जैसे उस जमाने में अरस्तू के विचार वापस आ रहे थे यूरोप में।
आधा बड़ी ज्यादा मुकम्मल तस्वीर पेश की, ये कोई आसान काम नहीं था।
ये कट पेस्ट जैसा नहीं,
नहीं बिल्कुल नहीं, एक नई रचना थी जिसने दोनों को ही बदल दिया।
और केयर ये भी सवाल उठाते हैं कि क्या ये 800 साल पुरानी सोच आज भी प्रासंगिक है हमारे आजकल की बहसों के लिए, जैसे मानव स्वभाव, नैतिकता, विज्ञान धर्म का रिश्ता।
हाँ, और उनका जवाब है बिल्कुल है, लेकिन तभी जब हम ये याद रखें कि एक्विनास पहले एक धर्मशास्त्री थे जो दर्शन का इस्तेमाल अपने धार्मिक सवालों के लिए कर रहे थे।
चलिए, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं एक्विनास के विचारों की दुनिया में, जैसा केयर बताते हैं। शुरुआत उनके जीवन और समय से करें।
हाँ, एक्विनास का जन्म 1225 के आसपास इटली में हुआ, मृत्यु 1274 में। ये 13वीं सदी का यूरोप था, एक तरह की बौद्धिक उथल पुथल का दौर।
अरस्तु के विचार वापस आ रहे थे, है ना, अरबी विद्वानों के जरिए।
जी, और विश्वविद्यालयों में खलबली मचा रहे थे। एक्विनास खुद एक अमीर परिवार से थे।
हाँ, मैंने पढ़ा था कि परिवार उन्हें आराम की जिंदगी देना चाहता था, पर उन्होंने डोमिनिकन समुदाय चुना।
बिल्कुल, जो उस वक्त नया था और पढ़ाई लिखाई बहस पर जोर देता था। जाहिर है परिवार को यह पसंद नहीं आया।
उनकी पढ़ाई अल्बर्ट द ग्रेट के पास हुई, जिन्होंने उन्हें अरस्तु से मिलवाया।
हाँ, और पेरिस यूनिवर्सिटी में उनका समय जबरदस्त बौद्धिक बहसों में गुजरा।
उनका काम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था, वो सुम्मा थियोलॉजिए।
हाँ, सुम्मा थियोलॉजिए, धर्मशास्त्र का सार, हजारों पन्नों की किताब।
और वो सवाल जवाब के फॉर्मेट में है, डिस्प्यूटेशियो।
हाँ, डिस्प्यूटेशियो, पहले सवाल, फिर उसके खिलाफ तर्क, फिर एक्विनास का जवाब और फिर विरोधी तर्कों का खंडन। ये दिखाता है कि वो सिर्फ लिखने वाले ज्ञानी नहीं थे,
बल्कि विचारों के अखाड़े में उतरने वाले थे।
बिल्कुल।
अच्छा, तो ये तो हुई उनकी जिंदगी और काम करने के तरीके की बात। अब उनके विचार ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं वो? उनके 5 मार्ग या 5 वेज बड़े मशहूर है।
हाँ, पर केयर हमें सावधान करते हैं, ये आज के जैसे वैज्ञानिक सबूत नहीं है
जिन्हें लैब में टेस्ट किया जा सके।
हाँ, ये दार्शनिक तर्क हैं इक्विनास कहते हैं, दुनिया को देखो, चीजें हिल रही हैं, हर चीज का कोई ना कोई कारण है, चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं,
हर चीज में कोई व्यवस्था दिखती है।
हाँ, कुछ चीजें दूसरों से ज्यादा पूरी या अच्छी लगती हैं। जब हम इन पर सोचते हैं तो हमारा दिमाग हमें एक शुरुआती बिंदु तक ले जाता है, एक पहला हिलाने वाला, एक पहला कारण, एक जरूरी अस्तित्व, एक सबसे उत्तम चीज, एक महान डिजाइनर।
और इसी को
इक्विनॉक्स कहते हैं, सब लोग ईश्वर कहते हैं।
लेकिन यहाँ एक पेंच है, जैसा आपने पहले कहा था, केयर इस बात पर जोर देते हैं कि इक्विनॉक्स के लिए ये जानना कि ईश्वर है, ये इस बात से बहुत अलग है कि ईश्वर क्या है।
एकदम सही। ये पांच रास्ते हमें ये तो बताते हैं कि कोई पहला कारण है, पर वो कैसा है ये हमारी समझ से मतलब बहुत परे है।
इक्विनॉक्स ईश्वर के लिए खास शब्द इस्तेमाल करते हैं, इप्सम एसे सबसिस्टेंस।
ये तो सुनने में ही भारी है।
हुँ?
इसका मतलब क्या हुआ?
मोटा मोटा मतलब है अपने आप में होने वाला अस्तित्व। सोचिए जैसे कोई चीज होती है और एक है होने की क्रिया। इक्विनॉक्स कहते हैं ईश्वर कोई चीज नहीं है जो होती है, बल्कि वो स्वयं होना है, अस्तित्व का सोता।
अच्छा, ये काफी गहरा है।
हाँ, ये दिखाता है कि ईश्वर हमारी कल्पना से कितना अलग है।
ईश्वर की बात से जुड़ा है ईसाई धर्म का वो मुश्किल कॉन्सेप्ट, त्रित्व या ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा।
जी,
केयर बताते हैं कि इक्विनॉक्स ने इसे समझाने के लिए भी दर्शन का सहारा लिया। उन्होंने रिश्ता, व्यक्ति, स्वभाव जैसे दार्शनिक शब्दों का इस्तेमाल किया,
लेकिन रहस्य को खत्म करने के लिए नहीं।
नहीं नहीं, बल्कि उसे एक ऐसी भाषा देने के लिए जिसमें उसके बारे में सोचा जा सके, बात की जा सके, ईश्वर के अंदरूनी जीवन को प्रेम के संवाद की तरह दिखाने के लिए।
फिर आता है सृष्टि का सवाल, ये दुनिया कैसे बनी?
इक्विनॉक्स का विचार है क्रिएशो एक्स निहिलो।
हाँ, क्रिएशो एक्स निहिलो, शून्य से सृष्टि। ईश्वर ने किसी पहले से मौजूद चीज से दुनिया नहीं बनाई, अपनी मर्जी से उसे अस्तित्व दिया।
और फिर ये भी बताते हैं कि इक्विनॉक्स के लिए सृष्टि सिर्फ एक बार हुई घटना नहीं है।
नहीं, ये एक लगातार चलने वाला काम है। हर पल ईश्वर हर चीज को संभाले हुए है, उसे अस्तित्व में बनाए रख रहा है। हम हर सांस के लिए उस पर निर्भर हैं।
उस जमाने में ये भी बहस थी कि क्या दुनिया हमेशा से है। अरस्तु के अनुयायी ऐसा मानते थे।
हाँ, इक्विनॉक्स का मानना था कि बाइबल कहती है कि दुनिया की शुरुआत हुई, तो वो इसे मानते थे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ तर्क से ये साबित करना मुश्किल है कि दुनिया हमेशा से है या नहीं।
उनके लिए ज्यादा जरूरी क्या था? उनके लिए ज्यादा जरूरी ये था कि दुनिया चाहे जब से हो, वो पूरी तरह ईश्वर पर निर्भर है। ये निर्भरता अहम थी, ना कि समय।
अब आते हैं इंसान पर, हम क्या हैं? इक्विनॉक्स का जवाब है हाइलोमॉर्फिज्म।
सुनने में भारी है पर मतलब सीधा है। हम शरीर मैटर और आत्मा फॉर्म का एक मौलिक जोड़ है। आत्मा वो है जो शरीर को इंसानी शरीर बनाती है, उसे जिंदा रखती है, सोचने समझने की शक्ति देती है।
तो शरीर कोई आत्मा का कैद खाना नहीं है,
जैसा कुछ पुराने दार्शनिक सोचते थे?
बिल्कुल नहीं, केयर इस पर बहुत जोर देते हैं। इक्विनॉक्स के लिए हम शरीर में फंसी आत्मा नहीं, बल्कि शरीर वाली आत्मा है, एक अटूट एकता।
और इसी से आत्मा की अमरता का विचार निकलता है।
हाँ, उनका तर्क कुछ ऐसा है कि हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग ऐसी चीजों को समझ सकता है जो पूरी तरह भौतिक नहीं है, जैसे न्याय का विचार या गणित के नियम।
तो अगर हमारी बुद्धि ऐसी अमूर्त चीजों को समझ सकती है, तो वो खुद भी पूरी तरह भौतिक नहीं हो सकती। और अगर आत्मा पूरी तरह भौतिक नहीं है, तो वो शरीर के मरने पर भी बची रह सकती है।
अच्छा, तो हम शरीर और आत्मा की एकता है, आत्मा अमर है। अब सवाल है, हमें जीना कैसे चाहिए? ये हमें उनकी नैतिकता या एथिक्स तक ले जाता है।
जी, केयर बताते हैं कि इक्विनॉक्स के अनुसार हम जो भी करते हैं, किसी न किसी अच्छाई की तलाश में करते हैं। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है खुशी, जिसे वो बीटीट्यूडो कहते हैं।
पर ये कौन सी खुशी है? पैसे वाली, शोहरत वाली?
नहीं, इक्विनॉक्स कहते हैं ये सब चीजें थोड़ी देर के लिए अच्छी लग सकती हैं, पर सच्ची टिकाऊ खुशी सिर्फ परम अच्छाई यानी ईश्वर में ही मिल सकती है।
और उस तक पहुंचने का रास्ता?
सद्गुणों का अभ्यास, अच्छी आदतें डालना। चार मुख्य सद्गुण हैं, समझदारी, विवेक, न्याय, संयम और साहस। इन्हें कोई भी तर्क से समझ सकता है।
और फिर तीन धार्मिक सद्गुण भी हैं।
हाँ, आस्था, आशा और प्रेम या दान, ये ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। तो नैतिकता सिर्फ नियम नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने का सफर है, जिसमें दिमाग और इच्छा शक्ति दोनों का रोल है।
इंसान अकेला तो रहता नहीं, समाज में रहता है। तो इक्वाइनस के राजनीति और कानून पर क्या विचार थे?
उनका कानून का सिद्धांत बहुत प्रभावशाली रहा है। केयर बताते हैं कि वो चार तरह के कानूनों की बात करते हैं।
चार तरह के? कौन कौन से?
पहला, शाश्वत कानून, ईश्वर के मन की योजना। दूसरा, प्राकृतिक कानून, हमारी अंदरूनी समझ कि क्या अच्छा है क्या बुरा,
जैसे सच बोलना, किसी की जान ना लेना।
हाँ बिल्कुल। तीसरा, मानव कानून, जो समाज को चलाने के लिए हम नियम बनाते हैं, जैसे ट्रैफिक नियम। और चौथा, दिव्य कानून, जो धर्म ग्रंथों में बताया गया है।
और यहीं पर उनकी वो मशहूर बात आती है, एक अन्यायपूर्ण कानून कानून ही नहीं है।
बिल्कुल, मतलब अगर इंसानों का बनाया कानून बुनियादी नैतिकता के खिलाफ है तो वो अपनी वैधता खो देता है, उसे मानना जरूरी नहीं रह जाता।
ये तो बहुत क्रांतिकारी विचार है।
हाँ, ये मानव अधिकारों और सामाजिक न्याय की जड़ में है। ये कहता है कि सत्ता की भी एक सीमा है, और वो सीमा है नैतिकता।
इसके बाद केयर एक्विनास के ईसा मसीह और चर्च के संस्कारों, सैक्रमेंट्स पर विचारों की बात करते हैं।
जी, एक्विनास के लिए ईसा मसीह वो पुल हैं जो इंसान और ईश्वर के बीच की दूरी पाटते हैं, और संस्कार जैसे बपतिस्मा या कम्युनियन वो भौतिक तरीके हैं जिनसे ईश्वर की कृपा हम तक पहुंचती है।
ये फिर से वही बात दिखाता है, शरीर और आत्मा जुड़े हुए हैं।
हाँ, उनका द्वैतवाद विरोधी विचार, ईश्वर भौतिक दुनिया के जरिए काम करता है।
और आखिर में केयर उनकी विरासत की बात करते हैं। शुरुआत में विरोध हुआ, फिर उन्हें संत घोषित किया गया और उनकी सोच थॉमिज्म बन गई।
हाँ, और केयर का निष्कर्ष यही है कि एक्विनास आज भी जिंदा हैं, उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ बड़े सबक या मुख्य संदेश क्या निकलते हैं, केयर की प्रस्तुति के आधार पर देखें तो? पहला तो शायद वही आस्था और तर्क वाला।
हाँ, मेरे ख्याल से वो सबसे अहम है। आस्था और तर्क दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। एक्विनास का वो सूत्रवाक्य है ना, अनुग्रह प्रकृति को नष्ट नहीं करता बल्कि उसे पूर्ण बनाता है।
मतलब ईश्वर का विश्वास हमारी सोचने की क्षमता को दबाता नहीं बल्कि बेहतर बनाता है।
बिल्कुल,
ये आज की दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है जहां अक्सर इन दोनों को लड़ाया जाता है।
दूसरा संदेश जिस पर कैर्जियर बहुत जोर देते हैं वो धर्मशास्त्र की अहमियत है।
हाँ, कि एक्विनास सोचते तो दार्शनिक की तरह थे पर उनका दिल धर्मशास्त्री का था।
दर्शन उनके लिए एक साधन था, मंजिल नहीं।
मंजिल ईश्वर को जानना था।
जी, ये समझना उनके काम को सही रोशनी में देखने के लिए जरूरी है।
तीसरा है प्राकृतिक कानून का विचार, कि नैतिकता का एक बुनियादी ढांचा हम सब इंसानों में है।
हाँ, चाहे हम किसी भी धर्म या संस्कृति के हों, अच्छा करो बुरे से बचो जैसी बातें, या आज भी यूनिवर्सल मानवाधिकारों या अलग अलग कल्चर के बीच नैतिक पुल बनाने के लिए कितना जरूरी है,
भारत जैसे देश के लिए तो खास तौर पर।
बिल्कुल। चौथा, इंसान की एकता का विचार, हम सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ आत्मा नहीं, बल्कि दोनों का गहरा जोड़ है।
ये हमें याद दिलाता है कि हमारा दिमाग और शरीर कितने जुड़े हुए हैं। हमारी अपनी परंपराएं जैसे योग, आयुर्वेद, वो भी तो यही कहती हैं।
सही बात है। और पांचवा, सद्गुण, नैतिकता। नैतिकता सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं बल्कि मैं कैसा इंसान बनूं का सवाल है।
लक्ष्य है सच्ची खुशी पाना, और वो अच्छी आदतें डालने से मिलती है।
हाँ, आज जब हम अक्सर शॉर्टकट या सिर्फ नतीजों पर ध्यान देते हैं, ये हमें चरित्र बनाने के महत्व की याद दिलाता है।
केयर अपनी किताबों में एक्विनास के कुछ ऐसे कथन भी बताते हैं जो याद रह जाते हैं। एक तो हमने कहा, अनुग्रह प्रकृति को नष्ट नहीं करता।
हाँ, एक और है जो उनकी बौद्धिक ईमानदारी दिखाता है। एक्विनास ने कहा था सरल शब्दों में कि अगर कोई धर्म को मानने वाला बिना वैज्ञानिक जानकारी के ऐसी बात को धर्म का हिस्सा बताए जिसे विज्ञान गलत साबित कर दे तो वो अपने ही धर्म का मजाक उड़वाएगा।
सोचिए, 800 साल पहले सत्य के प्रति कितना सम्मान।
जी, और ये भी, शुरुआत में हुई एक छोटी सी गलती अंत में जाकर बहुत बड़ी बन जाती है।
यानी बुनियादी बातों को ठीक से समझना कितना जरूरी है, चाहे पढ़ाई हो, रिश्ता हो, कुछ भी।
बिल्कुल। और ज्ञान के बारे में उनका एक सिद्धांत, जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वो ग्रहण करने वाले के तरीके के अनुसार ग्रहण किया जाता है।
मतलब हम दुनिया को अपनी क्षमता के हिसाब से ही समझते हैं।
हाँ, हमारी समझ हमेशा सीमित होती है, ये हमें थोड़ा विनम्र बनाता है।
और समाज के बारे में,
पूरे समाज की भलाई उसके किसी एक हिस्से की भलाई से ज्यादा बड़ी है।
हाँ, जिसे वो सामान्य भलाई, कॉमन गुड कहते हैं। ये आजकल के सिर्फ मेरा फायदा वाली सोच पर सवाल उठाता है।
तो इन सब गहरी बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इन्हें कैसे लागू करें?
देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर हम सद्गुण नैतिकता से सीख सकते हैं। सोचे कि हम कैसा इंसान बनना चाहते हैं, क्या हम ज्यादा समझदार, न्यायप्रिय, संतुलित, साहसी बन सकते हैं? खासकर विवेक या समझदारी का गुण, मुश्किल हालात में सही फैसला लेना,
हाँ।
और अपने काम में भी प्राकृतिक कानून के सिद्धांत, सबकी भलाई का सोचना, हर इंसान की इज्जत करना। क्या हमारा काम समाज के लिए अच्छा है? क्या हम न्याय कर रहे हैं?
सोचने विचारने की दुनिया में तर्क और आस्था या विज्ञान और धर्म के बीच पुल बनाने की प्रेरणा मिलती है,
और बौद्धिक ईमानदारी भी,
सच को स्वीकार करना चाहे वो कहीं से भी आए,
और समाज और राजनीति में सामान्य भलाई और न्यायपूर्ण कानून के विचार। हम किसी नीति या कानून को इस कसौटी पर कस सकते हैं, क्या ये सबके हित में है, क्या ये इंसाफ पर आधारित है?
बिल्कुल। मान लीजिए कोई मुश्किल नैतिक दुविधा है, पर्यावरण बनाम विकास, एक्विनास का विवेक पर जोर हमें शांति से, गहराई से सोचने और जल्दबाजी न करने की सलाह देगा।
तो कैर की इस प्रस्तुति से मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि गहरी आस्था और गहरी सोच दुश्मन नहीं, साथी हो सकते हैं। सच की तलाश में दिल और दिमाग दोनों चाहिए।
मेरे लिए भी यही। एक्विनास दिखाते हैं कि यही बात उन्हें आज भी इतना जरूरी बनाती है।
और मेरे लिए ये बात कि नैतिकता कोई हवा हवाई चीज नहीं, बल्कि इंसान के स्वभाव और उसकी सच्ची खुशी की तलाश में जमी है। ये कोई बाहर से थोपे गए नियम नहीं।
सही कहा। और हाँ, कैरा जिस तरह एक्विनास को एक जिंदा बौद्धिक साथी की तरह पेश करते हैं, वो वाकई प्रेरणा देता है।
जैसे हम आज भी उनसे कुछ सीख सकते हैं।
और ये भी कि अलग अलग विचारों और परंपराओं के बीच बातचीत कितनी फायदेमंद हो सकती है। एक्विनास ने अरस्तु, मुस्लिम, यहूदी विचारकों से सीखा भी और बहस भी की सम्मान के साथ। आज के बटे हुए समाज के लिए ये कितना जरूरी है।
और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो शायद सीधे कैरी की किताबों में नहीं है, लेकिन उनसे उभरा है। आज की हमारी दुनिया जो इतनी तेज भाग रही है, जहां चीजें इतनी बटी हुई हैं, और जहां अक्सर गहरी सोच की जगह सतही बातों को तरजीह दी जाती है, क्या वहां एक्विनास का धीरज भरा, व्यवस्थित और चीजों को जोड़कर देखने का तरीका हमें थोड़ा रुककर ज्यादा गहराई से सोचने और सच और मायने की तलाश में धीमा होने की प्रेरणा दे सकता है?
शायद उनके तरीके में ही आज के लिए एक अहम संदेश छुपा हो।
सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।